नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पहला तिमोथियस नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। तू है सच्चा मुक्तिदाता, आए हैं हम भजने 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 आए आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला तिमोथियस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने पहला तिमोथियस उसके पहले अध्याय के दो पद तक अध्ययन किया, जिसमें हमने प्रस्तावना को देखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम तीमुथियुस की पत्री से सीखना चाहते हैं, हम विनती करते हैं कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हमारे हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहन आज के वचन के द्वारा अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त कर सकें। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के तनाव में हैं, पारिवारिक उलझन में हैं, पिताजी आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें चंगाई, छुटकारा और शांति प्रदान करें। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पिछले अध्ययन में हमने प्रस्तावना को देखा और प्रस्तावना में हमने देखा कि यह पत्री कलीसिया के विश्वास के अंगीकार और आचरण से संबंधित निर्देश है। आपके आचरण के उचित होने से पहले आवश्यक है कि आपका विश्वास उचित हो, अनुचित विचार मन में हो और आपका आचरण उचित हो, यह तो कदापि संभव नहीं है। कोई मुझसे शिकायत कर रहा था, यदि कोई स्त्री वाहन चालक चौराहे पर अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाले तो इसका अर्थ है कि उसके वाहन की खिड़की खुली है और अन्य कुछ नहीं। आप सोच नहीं सकते कि वह क्या करेगी, क्योंकि वह कभी कभी बाएं मुड़ने का संकेत देकर दाहिनी ओर मुड़ जाती है और कभी कभी वह दाहिने मुड़ने का संकेत देकर बाईं ओर मुड़ जाती है। यह बड़े दुख की बात है कि मनुष्य उचित कार्य करने का दिखावा करता है जबकि उसके विचार उचित नहीं है। मेरे मित्रों, ऐसा दिखावा अधिक दिन का नहीं होता है। झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध में चेतावनी को हम देखेंगे। आइए आप मेरे साथ पढ़िए पहला तीमुथियुस की पत्री एक अध्याय उसका 3 पद। लिखा है, जैसे मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफिसूस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। ध्यान दीजिए, कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। गलातिया प्रदेश की कलीसिया को पौलुस ने लिखा था कि सुसमाचार दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यहूदी विश्वासी को अपनी समझ के अनुसार प्रस्तुत कर रहे थे। यही कारण था कि पौलुस ने उन्हें लिखा कि सुसमाचार एक ही है और शिक्षा भी एक ही है। मेरे मित्रों, स्थानीय कलीसिया की शिक्षा क्या होनी चाहिए? वही जो आरंभ में थी। पेंतिकोस्त के दिन की घटना के बाद लिखा है कि वे प्रेरितों की शिक्षा सुनते थे। यह स्थानीय कलीसिया के 4 गुणों में से एक है। पहला, प्रेरितों की शिक्षा। दूसरा, सहभागिता। तीसरा, प्रार्थना। और चौथा, रोटी तोड़ना। प्रत्यक्ष कलीसिया के ये 4 गुण हैं। यदि किसी कलीसिया की शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा नहीं है तो वह कलीसिया मसीह की सच्ची कलीसिया नहीं है। मेरे प्रियो, मैं मानता हूं कि हमारी व्यवस्था में अनेकता है, शिक्षाओं के कुछ परिप्रेक्ष्य में मतभेद उत्पन्न होती है। मैं एक बार किसी प्रसिद्ध पेंतिकोस्टल पादरी के साथ भोजन कर रहा था और हम अपनी परस्पर सहमति और असहमति पर चर्चा कर रहे थे और वास्तव में अंतर ऐसा गंभीर नहीं था जैसा कुछ लोग सोचते हैं। अंत में उन्होंने मुझसे कहा, हम कितनी बातों में सहमत हैं और विशेष करके आधारभूत बातों में, अतः हमें उन मुद्दों पर बीच में दीवार खड़ी नहीं करना है जो आवश्यक है ही नहीं। मेरे प्रियो, उनके इन विचारों से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मुझे दुख है कि सब मेरे समान नहीं सोचते हैं। निश्चय ही हमें प्रेरितों की शिक्षा पर चलना चाहिए। ये विश्वास के आधारभूत तथ्य हैं। प्रेरितों ने धर्मशास्त्र के समग्र एवं शाब्दिक प्रेरणा और परमेश्वर के वचन की अखंडता एवं अचूकता की शिक्षा दी है। उन्होंने प्रभु यीशु के परमेश्वर होने की शिक्षा दी है। हम इस पत्री में देखेंगे कि पौलुस के मन में प्रभु यीशु का कैसा विचार था। कुछ विचारकों का कहना है कि उसने प्रभु यीशु के परमेश्वर होने की शिक्षा नहीं दी, परंतु इस विषय पर पौलुस दिन के सूरज के समान स्पष्ट है। उसने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की स्पष्ट शिक्षा दी है। इस अध्याय में भी वह कहता है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु, तो वह प्रभु यीशु को परमेश्वर के साथ ही जोड़ता है और स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। वह कहता है कि इफिसुस में रहकर पौलुस तिमोथियस को इफिसुस में छोड़कर मकीदुनिया में आ गया था। मकीदुनिया एक स्थान है जहां पर वह चला गया था। इफिसुस एक महत्वपूर्ण स्थान था और पौलुस ने अन्य स्थानों की तुलना में वहां सबसे अधिक समय बिताया था। वहां उसने वृहद सेवा भी की थी। तिमोथियस को इफिसुस के विश्वासियों को सिखाना था कि वे सुसमाचार की अपेक्षा अन्य कोई शिक्षा ना दें, क्योंकि यदि कलीसिया की शिक्षा उचित ना हो तो वह कलीसिया नहीं है। चाहे उनके पास कितने भी प्राचीन सेवक, पासवान, संगीत निर्देशक, गायन मंडली और संडे स्कूल हो, उनकी शिक्षा वही होना है जो प्रेरितों की थी। तो आइए हम सब पढ़ेंगे पहला तिमोथियस की पत्री एक अध्याय उसका 4 पद। लिखा है, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित हैं। वैसे ही फिर भी कहता हूं। मित्रों, यहां पर ध्यान दें, उन कहानियों, इफिसुस उस युग के गौण धर्मों का महान केंद्र था। वहां इंद्रायन, ट्राजन और डायना के मंदिर थे जो यूनानी कपोल कथाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे। इफिसुस के मसीही विश्वासियों को इनसे दूर रहना था। कहानियों से पौलुस का अभिप्राय संभवतः फीलों से था, जिसने पुराने नियम को कपोल कल्पित कथाओं से जोड़ दिया था। हमारी कुछ बाइबल अध्ययन की सेमिनारियां इन्हीं विचारों पर आधारित हैं। उनके विचार में उत्पत्ति की पुस्तक एक काल्पनिक पुस्तक है और उसके नायक यथार्थ में थे ही नहीं, परंतु आज पुरातत्व की खुदाइयों से उसके प्रमाण मिलने के कारण मुक्त विचारक इस दृष्टिकोण से पीछे हट गए हैं। तब पौलुस आगे कहता है, अनंत वंशावलियों, यह शायद उस शिक्षा के संदर्भ में है कि कलीसिया यहूदियों की अगली पीढ़ी है और अलग युगों के मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार को स्वीकार नहीं करती है। ऐसी शिक्षा परमेश्वर की योजना में इसराइल और कलीसिया की स्थितियों के विषय में उलझन उत्पन्न करती है। उस युग में यूनानी भी गलत शिक्षा दे रहे थे कि परमेश्वर से मनुष्य की उत्पत्ति है। मूल स्रोत से एक मनुष्य उत्पन्न किया गया जिसने एक और मनुष्य की रचना की, जिसने एक और मनुष्य की रचना की, और इस प्रकार यह श्रृंखला चलती गई। वे यीशु को इसी श्रृंखला में कहीं रखते थे कि वह भी एक इसी प्रकार का सृजित प्राणी है। यह आरंभिक कलीसिया की एक झूठी शिक्षा थी। तब हम देखते हैं, जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। पौलुस के कहने का अर्थ यह है कि ये झूठी शिक्षाएं विश्वास में निर्माण नहीं होने देती हैं। आज हम मुक्त विचारवादी कलीसियाओं में इसका फल देख सकते हैं। उनके वर्षों के अविश्वास ने उन्हें कठोर निर्दयी मनुष्य बना दिए हैं, जिनमें विश्वास की अतः कमी थी और आज भी कमी है। उन्होंने परमेश्वर के वचन का परित्याग किया है और उन कलीसियाओं में इसका परिणाम देखकर विश्वास नहीं होता है। पहला तीमुथियुस के पत्र 1:5 में हम पढ़ते हैं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ध्यान दीजिए, शुद्ध मन से प्रेम उत्पन्न हो। पौलुस यहाँ फिर इस युवा प्रचारक को पत्र में घनिष्ठता से संबोधित कर रहा है, जिसे आप कलीसियाओं को लिखे उसके पत्रों में नहीं पाते हैं। वह तीमुथियुस को कह रहा है कि कलीसिया में जो भी सिखाया जाए उसमें शुद्ध मन से प्रेम प्रकट हो। शुद्ध मन हमारे पुराने स्वभाव के विपरीत है। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु में जिस विश्वासी को धर्मी गिना गया है वह अब आत्मा का फल प्रकट कर सकता है। प्रेम एक फल है। मित्रों, अब हम देखेंगे कलीसिया को 3 फल प्रकट करना आवश्यक है। पहला, विश्वास, परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में विश्वास। दूसरा, प्रेम, प्रेम शब्दों से प्रकट नहीं होता है, प्रेम मनुष्य के प्रति सक्रिय चिंता करना है, अर्थात किसी की पीठ के पीछे ना तो उसकी बुराई करना है और ना ही उसकी किसी प्रकार हानि करना है। मैं एक ऐसी कलीसिया को जानता हूं जिसने अपने प्रभु के दास अर्थात पादरी की हानि करने का यथासंभव प्रयास किया। उनकी एक बात अनुचित थी कि वह परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं देता है। वह निश्चय ही परमेश्वर का वचन सुनाता था। वे उसकी पीठ पीछे बुराई करके भी प्रेम करने की डींग मारते थे। यह कैसा ढोंग है मेरे मित्रों। प्रेम कहने की नहीं, करने की बात है। प्रेम प्रकट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप प्रेम करते हैं, अन्यथा आप दिखावा करते हैं। कलीसिया के जीवन में विश्वास का प्रदर्शन होना है। कलीसिया में प्रशासन और पदाधिकारी होना चाहिए, परंतु शासन पद्धति के कारण मतभेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि कलीसिया में विश्वास और प्रेम नहीं है तो आपके पास एकमात्र इमारत की अपेक्षा और कुछ भी नहीं है। किसी प्रकार का एक धार्मिक सभा मात्र ही है। यदि विश्वास और प्रेम का वहां प्रदर्शन है तो शासन पद्धति कैसी भी क्यों ना हो उसका कोई महत्व नहीं है। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखते हैं तीसरी बात, शुद्ध विवेक। मेरे विचार में विवेक एक विश्वासी के लिए अच्छा मार्गदर्शक नहीं है, परंतु फिर भी विश्वासी में शुद्ध विवेक होना आवश्यक है। आप रात को सोते समय क्या दिन में किसी काम के करने या किसी बात के मुंह से निकलने के बारे में खेदित होते हैं? ऐसे कई भावनात्मक विश्वासी होते हैं और पाए भी जाते हैं। मुझे एक बार किसी ने फोन किया, वह रो रहा था। उसने कहा, मैंने आपके विषय एक ऐसी बात कह दी है जो मुझे नहीं कहनी थी, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, परंतु स्पष्ट है कि वह सो नहीं पा रहा था। संवेदनशील विवेक होना अच्छा है। कुछ लोगों का विवेक गर्म लोहे से दागा गया है, वे अच्छे और बुरे में अंतर नहीं जान सकते हैं। मेरे मित्रों, ये 3 अद्भुत गुण पौलुस कहता है कलीसिया के फल हैं। हमें प्रेम करना है और अपने विवेक को परमेश्वर के लिए प्रयोग में लाना है। पहला तीमुथियुस की पत्र 1:6 में हम पढ़ते हैं, इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, बकवाद, खोखली बातें, सुंदर शब्द, आकर्षक भाषा, कुछ लोग आपको मक्खन लगाएंगे अर्थात आपके पीछे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, आपकी पीठ थपथपाएंगे, परंतु उसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, वे केवल बातें ही बातें होंगी। पहला तिमोथियुस 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पौलुस सीधी बात कह रहा है, वह स्पष्ट कहता है कि कुछ लोग झूठी शिक्षा दे रहे हैं। वे बड़े विश्वास के साथ सिखाते हैं, वे परमेश्वर के वचन का त्याग करते हैं और स्वयं ही नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कलीसिया में पाए जा रहे थे कि वे क्या कह रहे हैं उन्हें स्वयं को पता नहीं है, परंतु दूसरों को वे शिक्षा दे रहे थे। और पौलुस कहता है कि ऐसी बातों से आप सावधान रहें, ये गलत शिक्षा न दें। पहला तिमोथियुस के पत्र 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। जी हाँ, इस भाग में पौलुस विश्वासियों को झूठी शिक्षाओं के प्रति सावधान करते हुए गौण धर्मों और मूर्ति पूजा का उल्लेख करता है, जो तिमोथियुस के कार्यक्षेत्र इफिसुस में बहुतायत से प्रचलित थे। उसने उस झूठी शिक्षा के विरोध में चेतावनी दी जो पुराने नियम को मात्र एक कपोल कल्पित कथा कहती थी। अब वह विधि पालकों के विरुद्ध चेतावनी देता है। वे कहते थे कि उद्धार के लिए और उद्धार पश्चात पवित्रता हेतु व्यवस्था पालन करना आवश्यक है। व्यवस्था एक उद्देश्य निमित्त प्रबंध है। परमेश्वर ने उद्धार के साधन स्वरूप व्यवस्था नहीं दी थी। व्यवस्था तो हमारे पाप को उजागर करके हमें दोषी ठहराती है। उसका उद्देश्य है कि हमें उद्धारक की आवश्यकता का बोध करवाए। व्यवस्था के अधीन तो सर्वोत्तम सदाचारी भी दोषी है, परंतु सुसमाचार में प्रभु यीशु में विश्वास करके बुरे से बुरा मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है। मेरे मित्रों, एक पापी कर्मों के आधार पर उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि वह सुकर्मी नहीं हो सकता है। पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखा, रोमियों के पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अतः परमेश्वर को अपने आप प्रसन्न कर लेना परमेश्वर के वचन के विपरीत है। उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि आप उसकी अनिवार्यताओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कर्मों से तो उद्धार असंभव है, परंतु उद्धार से कर्म संभव है। जी हाँ, आप उद्धार प्राप्त करने के द्वारा अच्छे कर्मों को कर सकते हैं। इफिसियों को लिखे पत्र में 2 अध्याय उसके 8 से 10 पद में पौलुस इसे स्पष्ट करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमने वचन में पढ़ा, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। जी हाँ, व्यवस्था परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। वह नैतिकता में सर्वोच्च है। नैतिक आचरण के लिए तो वह अति उत्तम है, परंतु मनुष्य के उद्धार में सक्षम नहीं है। वह पापी का उद्धार नहीं करवा सकती है, परंतु वह उसे सुधार सकती है। उस पर प्रकट कर सकती है कि वह एक पापी है। उसका यही उद्देश्य है। मेरे मित्रों, यहाँ पर पौलुस बहुत ही स्पष्ट रीति से हम सबको समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि व्यवस्था हमें सिर्फ यह बोध कराती है कि हम पापी हैं। हम जान पाते हैं कि हम पापी हैं। जिस प्रकार से चोरी नहीं करना ये हमें नहीं मालूम था, लेकिन जब कानून बन गया तो हम जानते हैं कि चोरी करना पाप है, गुनाह है। और इसी प्रकार से व्यवस्था हमें हमारी गलतियों को हमारे सामने रखती है, न कि व्यवस्था हमें उससे छुटकारा दिलाती है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि हम अपने अच्छे कर्मों से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम कमा नहीं सकते हैं। इसके लिए मुझे और आपको, हम सबको प्रभु यीशु के पास ही आना होगा, क्योंकि प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों में पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु के द्वारा ही हमारे लिए उद्धार है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारे पापों के लिए, सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। इसलिए आपको कोई भी दान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक काम करना है कि प्रभु यीशु के पास आए, आपने जो पाप किए हैं उसको उसके सामने में मान लें और कहें कि प्रभु, मैंने पाप किया है, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, परंतु इसकी सजा आपने ले ली है, इसलिए आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं। जब हम इस प्रकार से पश्चाताप करेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, तब प्रभु यीशु हम पर अनुग्रह के द्वारा से, हमारे विश्वास के द्वारा से हमें क्षमा करेगा और हमें उद्धार देगा, मोक्ष देगा, मुक्ति देगा, ताकि हम उस नए जीवन का आनंद ले सकें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं यह विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम, भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको मंडली का प्रधान।